समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है परिक्रमा, तो आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर, आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और उनसे जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास है, और खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम के इस अंक के साथ आप जुड़ चुके हैं सर फिरोजी और अभिषेक के साथ। नमस्कार अभिषेक।
हेलो सर फिरोजी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सर फिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। President Draupadi Murmu says active participation of the tribal people is necessary for complete development of the country.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
Israel said it has completed its retaliatory military operation against Iran, warns it against further escalation.
मौसम विभाग ने ओडिशा के चक्रवात प्रभावित इलाकों में और बारिश होने की चेतावनी दी, राहत और बचाव कार्य जोरों पर।
Manika Batra becomes first Indian to reach quarterfinals of the World Table Tennis Champions event. And now, Sir Firoz, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Disarmament Week, which is from the 24th to the 30th of October, and Global Media and Information Literacy Week, which is also from the 24th to the 31st of October. So to start off with the first topic of the day, that is the Disarmament Week, well, I'd like to begin with the words of Ronald Reagan, who said, Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.
जी अभिषेक, शांति का मतलब संघर्ष का ना होना नहीं है, बल्कि शांति का अर्थ है सभी संघर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता। क्योंकि एक समाज में मतभेद होते हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम बिना किसी नुकसान पहुंचाए उन मतभेदों को दूर कर सकें।
Yes, and we are observing Disarmament Week. It seeks to promote awareness and better understanding of disarmament issues and the cross-cutting importance. This week begins on 24th October, which is the anniversary of the founding of the United Nations. The week-long annual observance was first called for in the final document of the General Assembly's 1978 Special Session on Disarmament.
और अभिषेक, उसके करीब 20 साल बाद 1995 में महासभा ने निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर जनता के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए निरस्त्रीकरण सप्ताह में भाग लेने के लिए सरकारों साथ ही गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित किया।
And also, Sir Firozi, let's also recall the words of Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, who very famously said, Disarmament must be brought back to the center of our common efforts for peace and security. Well, disarmament means a reduction of total abolition of military capabilities or means of a state. It is necessary to prevent arms race between countries, eliminate the threat to humanity, prevent suffering among civilians, and eliminate the burden of military expenditure from states.
जी अभिषेक, संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों को कम करने और उनका प्रयोग समाप्त करने, रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है, और दुनिया भर के देश एक सुरक्षित दुनिया बनाने और लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निरस्त्रीकरण को अपना रहे हैं। और अभिषेक, भारत हमेशा से ही शांति का समर्थक रहा है। हमारे देश ने हमेशा अस्त्रों पर नियंत्रण की पैरवी की है। यहाँ तक कि भारत और जापान के बीच बीते महीनों में हुई 10वें दौर की बैठक के दौरान भी दोनों देशों ने निरस्त्रीकरण और हथियारों के विस्तार को रोकने पर चर्चा की। और अभिषेक, चाहे महासभा में परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का प्रस्ताव रखना हो या संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण उपसमिति के गठन की बात हो, भारत हमेशा इन मामलों में आगे रहा है, और भारत ने हमेशा तनावपूर्ण मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि बीते दिनों ब्रिक्स सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने पर भी अब सहमति बन चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद भारत और चीन के संबंधों में और सुधार होगा।
Yes, and the heightened tensions and dangers are better resolved through serious political dialogue and negotiation, not by more arms. Weapons of mass destruction, in particular nuclear arms weapons, continue to be of primary concern owing to their destructive power and the threat that they pose to humanity.
बिल्कुल अभिषेक, और इन हथियारों से होने वाली बर्बादी को हम देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं। जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो हमें जापान के उन दो शहरों का मंजर याद आता है जब न्यूक्लियर अटैक में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हिंसा की शिकार हो रही है और जब हम इस तरह के संघर्षों की खबर सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हिंसा इंसानियत की कितनी बड़ी दुश्मन है।
Are pursued for many reasons, including to maintain international peace and security, uphold the principles of humanity, protect civilians, promote sustainable development, foster confidence and trust among states, and prevent and end armed conflict. And by reducing the number of weapons in circulation, nations can mitigate the risk of conflicts escalating into armed confrontations.
जी बिल्कुल अभिषेक, और निरस्त्रीकरण के इन उपायों का उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है और खासतौर पर जिन संसाधनों का उपयोग हम हथियारों के उत्पादन पर खर्च करने पर कर रहे हैं, इन्हीं संसाधनों का उपयोग हम अपने आर्थिक विकास और स्वास्थ्य पर कर सकते हैं और अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कर सकते हैं और आगे चलकर यही युवा दुनिया भर में शांति का संदेश देंगे।
Yes, and so reducing the availability of arms can limit the intensity of conflicts and pave the way for peaceful resolutions through diplomacy. And these efforts are essential to help prevent the proliferation of weapons, reduce military expenditures, and create a safer world for future generations. And to end the first segment of our Dateline, Sarfirozi, let's remember the words of Vijayalakshmi Pandit, who said, "The more we sweat in peace, the less we bleed in war."
Bilkul.
Well, food for thought, isn't it?
Ji.
And now moving on to a second topic of the day, which is the Global Media and Information Literacy Day, which we are observing this week. Confusion, he confusion has solution, kuch pata nahi. Yes, and our brains depend on information to work optimally. The quality of information we engage with largely determines our perceptions, beliefs and attitudes. It could be information from other persons, the media, libraries, archives, museums, publishers or other information providers, including those on the internet. And Sir Firozi, people across the world are witnessing a dramatic increase in access to information and communication.
Ji.
And while some people are starved for information, others are flooded with print, broadcast and digital content.
जी बिल्कुल अभिषेक, और हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में होने वाली अलग अलग घटनाओं की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से ही मिलती है और अगर ये जानकारी सकारात्मक रूप से पेश की जाए तो ये समाज में ईमानदारी, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती है। पर यदि इसी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर या नकारात्मक तरीके से पेश किया जाए तो ये समाज में असंतुलन और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। और अभिषेक, यहीं पर मीडिया और सूचना साक्षरता एक अहम रोल निभाती है जिसके से लोगों को मीडिया से मिलने वाली जानकारी के लिए के प्रति जागरूक किया जाता है।
Yes, and let's also talk about the theme of Global MIL Week 2024, which is the new digital frontiers of information, media and information literacy for public interest information.
जी अभिषेक, और हमारी ये जो दुनिया है ये बहुत तेजी से डिजिटल युग में बदल रही है और कहा जा सकता है कि बदल भी चुकी है काफी हद तक। एक डिजिटल युग अब आ चुका है और इसमें मीडिया साक्षरता की भूमिका बड़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं जिनकी मदद से हम देश दुनिया में हो रही घटनाओं को लेकर अप टू डेट रहते हैं। लेकिन अभिषेक, कहीं ना कहीं यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुकी है क्योंकि हम तक इतनी जानकारी आ रही है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों तक बहुत सारी जानकारियां पहुंच रही हैं, एक समाज के एक हिस्से तक बहुत सारी जानकारियां पहुंच रही हैं, तो ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम तक जो कंटेंट आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर बात की जाए AI जैसे टूल्स की, तो इनका भी कई बार गलत इस्तेमाल देखा गया है, लोगों की इमेजेस को मॉर्फ कर दिया जाता है जिसके कारण उनकी छवि खराब होती है। तो अभिषेक, इन सब चुनौतियों पर ध्यान देते हुए ही इस वर्ष ग्लोबल MIL वीक 2024 की थीम भी आज की डिजिटल दुनिया में लोगों को महत्वपूर्ण सोच कौशल से लैस करने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
एंड दिस ईयर्स ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय यूनेस्को एंड द हाशिमाइट किंगडम ऑन द 30 to 31st of October 2024 इन अम्मान, जॉर्डन, and it will address the transformative impact of emerging technologies such as generative artificial intelligence and the new generation of digital content.
और अभिषेक, हमेशा कहा जाता है कि अधूरी जानकारी होना जानकारी ना होने से ज्यादा खतरनाक है। तो श्रोताओं, आप तक जो भी जानकारी पहुंचती है उसे बिना जांचे और परखे उस पर विश्वास ना करें और ऐसी जानकारियों को आगे फॉरवर्ड करने से बचें।
Yes, and so this week also commemorated annually is a major occasion for stakeholders to review and celebrate the progress achieved towards media and information literacy, for also to close our discussion on Global Media and Literacy Week. Let's end with the famous saying. Well, as the old saying goes, a man with one watch always knows what time it is. A man with two watches is never sure.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। अभिषेक, कहा जाता है कि भारत की जो रीढ़ है वो यहाँ के किसान हैं और किसानों को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से हर साल किसानों को वित्तीय सहायता तो मिलती ही है, साथ ही उनके उत्पादों को उचित समर्थन मूल्य मिले इसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। कम से कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार हो जिससे कि किसानों को अधिक मुनाफा मिले और उनकी आय दोगुनी हो सके, इसके लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान भी इसमें जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के परभणी में स्थित वसंतराव नाईक कृषि विश्वविद्यालय ने 5 फसलों के बीजों की ऐसी नई किस्में विकसित की है जो कम पानी में और बदलते जलवायु में भी उच्च गुणवत्ता की औसत से अधिक पैदावार देती है। इन किस्मों को भारत सरकार के गैजेटियर में भी स्थान मिला है। इन्हीं किस्मों के बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि ने अधिक जानकारी दी।
ये 5 किस्मों में सोयाबीन की किस्म माउस 731, चने की किस्म परभरी चना 16, देसी कपास की किस्म PA 833, अमेरिकी कपास की किस्म NH 677 और तिल की किस्म TLT 10 शामिल है। जो सोयाबीन की किस्म है वो 94 से 98 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसमें 15 दिन तक फली के टूटने की अगर बरसात भी होती है तो न टूटने की जो है क्षमता रखती है। सूखी भूमि के लिए अधिक उपयुक्त है, कीट और रोग प्रतिरोधी है। जो हमने चने की किस्म निकाली है ये औसत से ज्यादा पैदावार देती है, 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसका जमीन से पॉड की जो डिस्टेंस है वो 33 सेंटीमीटर है, इससे इसको कंबाइन हार्वेस्टर से काटने में आसानी होती है। देसी कपास की जो किस्म है इसकी खासियत ये है कि इसमें रुई की जो उत्पादन क्षमता है वो 35 से 36% तक होती है। इसे 28 से 29 मिलीमीटर लंबे धागे मिलते हैं और 150 से 160 दिनों की अवधि में ये पक जाती है। रस चूसने वाले कीटों और रोगों के प्रति ये अवरोधक है और जल के अभाव में भी ये अच्छी पैदावार देती है। अमेरिकी कपास की जो किस्म प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता 14 से 15 कुंतल है, रुई का उत्पादन 37 से 38% है और इसमें भी धागे की लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर है और ये केवल 155 से लेके 160 दिन में पक जाता है। तिल की किस्म TLT 10 कहते हैं, इस किस्म में तेल का उत्पादन अधिक होता है कि ये खरीफ में, रबी में, गर्मी में, तीनों मौसम में इसे उगाया जा सकता है। इसकी पकने की अवधि 90 से 95 दिनों का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 6 से 7 कुंतल है और इसमें जो तेल की मात्ा है वो 45 से 47% तक है।
परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर वी नाउ गो ओवर टू मिजोरम एंड इन मिजोरम मोर देन 5 लाख ट्री सैपलिंग्स प्लांटेड अंडर एक पेयर माँ के नाम एंड इन मिजोरम मोर देन 5 लाख ट्री सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड अक्रॉस द स्टेट अंडर द एक पेयर माँ के नाम कैंपेन। वी हैव मोर डिटेल्स फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट इन आइजोल।
Speaking exclusively to Akashvani, Divisional Forest Officer of Aizawl and Nodal Officer of the Campaign, Vanlal Nunpuimhar, said that following the appeal made by Prime Minister Narendra Modi, the Mizoram government has taken massive efforts in pre-plantation drive for the success of the campaign. She said that Ek Per Ma Ke Naam campaign was launched in the state on June 5th this year on the occasion of World Environment Day. Vanlal Nunpuimhar said that more than 5 lakh new tree saplings have been planted since the commencement of the campaign. She further said that reports of tree plantation keeps coming in till today and that the tree species which are being planted are more suitable for Mizoram soil and environment.
Hello, this is Vanlal Nunpuimhar, the FO Forest Extension Division. I am happy to say that Mizoram is taking a very enthusiastic role in planting trees under the Ek Per Ma Ke Naam campaign. Till date, it has been reported that more than 5 lakh trees have been planted across the state, and these photographs have been uploaded, and the uploading of photographs and video is still ongoing. This is not the sole initiative of the EFNCC Department, Mizoram, but a collective effort of all other government departments, schools, colleges, NGOs, and village councils, as well as the public. Furthermore, it is worthy to mention that School Education Department has extensively contributed towards the success of this ongoing Ek Per Ma Ke Naam campaign.
It may be mentioned that Mizoram has the highest forest cover in India as a percentage of its total geographical area at 84.53. In the campaign, various departments of the government, schools, colleges, universities, NGOs, village councils, local councils, and various individuals have taken part with devotion and enthusiasm for the success of the campaign. Irene, Akashvani, Aizawl.
अभिषेक, गुजरात से एक बड़ी ही दिलचस्प खबर हमारे पास आई है, जहां सेरोगेट गाय और ETIVF तकनीक का उपयोग करके विशेष विशेषताओं वाली बछिया पैदा करके दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है और इस दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई है। सुनते हैं हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
कच्छ की सरहद डेयरी के अध्यक्ष वलमजी भाई हुंबल के नेतृत्व में सरहद डेयरी ने गायों की प्रजनन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कच्छ में पहली बार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से भ्रूण स्थानांतरण का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कच्छ जिले के मांडवी तालुका की गोधरा दूध सोसाइटी में दूध भरने वाले सभासद वीरजी भाई वरसाणी की गाय में भ्रूण स्थानांतरित किया गया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की सफलता से दो स्वस्थ बच्चियां का जन्म हुआ था। भ्रूण स्थानांतरण परियोजना का उद्देश्य देश में दूध उत्पादन बढ़ाना और अच्छी नस्ल की गायों का प्रजनन करना है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैल के वीर्य और गाय के अंडाणु का उपयोग किया जाता है। इसी शुक्राणु और अंडे की मदद से भ्रूण तैयार किया जाता है और इन भ्रूणों को एक स्वस्थ गाय में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद जो बछिया पैदा होती है वो अच्छी नस्ल की होती है और भविष्य में प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सरहद डेयरी द्वारा अब तक 81 गायों का भ्रूण परीक्षण किया जा चुका है, जिससे 10 बछिया का जन्म हुआ है। इस संबंध में अमूल फेडरेशन के उपाध्यक्ष और सरहद डेयरी के चेयरमैन वालमजी भाई हुंबल ने इस प्रकार जानकारी दी।
लगभग एक साल से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमने कच्छ में शुरू की है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात सरकार और NDDB और अमूल उसका सहयोग से हमने लगभग 81 गायों का एम्ब्रियो ट्रांसलेट किया था। तो ये किस्सा समग्र गुजरात में प्रथम तो है ही, सारे भारत में तीसरा नंबर आता है।
आमतौर पर एक गाय दिन में 7-8 लीटर दूध देती है, जबकि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पैदा हुई बछिया लगभग 2.5 साल के बाद एक दिन में 25 से 30 लीटर दूध देती है, यानी उत्पादन में 70% बढ़ोतरी होती है। गिर, कांकरेज और जर्सी गायों में भी इस प्रकार की विधि से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तकनीक से भविष्य में अच्छी नस्ल की गायें और बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सकता है। भूज से परेश मारू की रिपोर्ट के साथ परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड।
और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं आजादी के सफर की ओर।
On 26th October 1947, Jammu and Kashmir acceded to the Union of India after Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession, which was accepted by India's last Governor-General, Lord Mountbatten, on 27th October. Early in the morning on 27th October, the Indian Army's 1st Sikh Battalion was airdropped in Srinagar, where they resisted the tribal invasion supported by Pakistan.
As the tribal invaders captured Uri and Baramulla with minimal resistance from the Maharaja's forces, the fall of Srinagar looked imminent. On 24th October, Maharaja Hari Singh appealed to India for military assistance to stop the aggression. The request was considered on 25th October 1947 in a meeting of India's Defence Committee headed by Lord Mountbatten. The committee comprised Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Baldev Singh, Gopalaswamy Iyengar and the British Commanders-in-Chief of the Army, the Air Force and the Navy. The committee concluded that the most immediate necessity was to rush arms and ammunition already requested by the Kashmir government.
The Defence Committee sent V.P. Menon, Secretary of the Ministry of the States, to Srinagar to make an on-the-spot study the same day. He returned to New Delhi the next day with his impressions and suggested sending troops to Kashmir, pointing out the supreme necessity to save Kashmir from raiders. Menon was then flown to Jammu to advise the Maharaja about the government's view, and that's when the Maharaja finally signed the instrument of accession on 26th October. The day is celebrated as Accession Day.
26th of October is the birth anniversary of the legendary freedom fighter and eminent journalist Ganesh Shankar Vidyarthi. He was born on the 26th of October 1890 at Attar Suya in Prayagraj district of Uttar Pradesh. After finishing school, Vidyarthi enrolled at Kayasth Pathshala College but was unable to graduate since he had to support his family of humble means. He went on to become a clerk, but his real passion lay in journalism. Later on, he began writing for Karma Yogi, the publication founded by Pandit Sundarlal, a leader of the revolutionary Ghadar movement. At the age of 23, Vidyarthi, however, quit the publication and moved to Kanpur, where he started his own Hindi weekly, Pratap, in 1920.
The same year, he was sentenced to 2 years rigorous imprisonment for championing the cause of peasants of Rai Bareli. He was released in 1922, but was immediately sent to jail again for allegedly delivering a seditious speech at Fatehgarh. He wrote extensively not only about the freedom struggle, but also about social inequality in the society.
Vidyarthi also used journalism to develop critical thinking among the masses. He was a champion of communal harmony and played a leading role in forming an organization called Hindustani Biradari. It organized programs on communal harmony and joint celebrations of various festivals. Ganesh Shankar Vidyarthi was a member of the Indian National Congress and an ardent follower of Mahatma Gandhi. Over time, he became an influential leader during the non-cooperation movement. He took a leading role in the Home Rule movement of 1917-18 and led the first strike of textile workers in Kanpur.
Immediately after the execution of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, a riot broke out in Kanpur. Called the Lion of Kanpur, Vidyarthi took upon himself to calm communal passion, running high and stop rioting. Unfortunately, he was killed in the riots on 25th March 1931, 2 days after the hanging of the three revolutionaries. Paying tribute to Vidyarthi, President Ramnath Kovind said he sacrificed his life to douse the flames of hatred during communal violence.
In pursuance of his dream of a strong and united India, he sacrificed his life for peace and non-violence like a true disciple of Mahatma Gandhi.
Mourning the loss of Vidyarthi, who was merely 40 years of age at the time of his death, Mahatma Gandhi wrote in The Young India, "The death of Vidyarthi was one to be envied by all."
In memory of the celebrated journalist, the Government of India instituted the prestigious Ganesh Shankar Vidyarthi Award to recognize outstanding contribution in the field of Hindi journalism.
Yes, and in some sports news, in cricket, New Zealand defeated India by 113 runs in the second test in Pune this afternoon. With this victory, the visitors have won the three-match series.
और एक खबर टेबल टेनिस से, जहां मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है। वे WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। और श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज ही पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है।
Yes, and Carlo Lorenzini passed away on this day in 1890, better known by the pen name Carlo Collodi. He was an Italian author, humorist and journalist, widely known for his fairy tale novel, The Adventures of Pinocchio.
और भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान संगीत परंपरा में अनेक श्रेष्ठ तथा धुरंधर संगीतज्ञों ने देश की कला एवं संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से ही एक शास्त्रीय संगीत गायक डीवी पुलस्कर की आज पुण्यतिथि है। इन्हें ग्वालियर घराना और गंधर्व महाविद्यालय उत्तराधिकार में मिला। इनकी पहली डिस्क 1944 में बनी और 1955 में इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में चीन का दौरा किया। इन्हें फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद आमिर खान के साथ एक अविस्मरणीय युगलबंदी के लिए भी जाना जाता है। हम आपको सुना रहे हैं इनकी वही युगलबंदी।
Yes, and Keith Lyon Urban was born on this day in 1967. He's an Australian and American country singer, songwriter and guitarist. Urban wrote and performed the song For You for the film Act of Valor, which earned him nominations at both the 78th Golden Globe Awards and at the 18 Critics' Choice Awards in their respective Best Original Song categories. Let's listen to it.
All I saw was smoke and fire. I didn't feel a thing. But suddenly I was rising higher, and I felt like I just made the biggest mistake.
आज मशहूर संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर का जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा जगत में इन्हें बाला साहब के नाम से भी जाना जाता है। हृदयनाथ मंगेशकर ने संसार, जानकी और चानी सहित कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी संगीत दिया। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी फिल्म का एक गीत।
Yes, and Hillary Diane Rodham Clinton was born on this day in 1947. She is an American politician and diplomat. She became the first woman to win a presidential nomination by a major U.S. political party and the first woman to win the popular vote for U.S. president. She is the only First Lady of the United States to have run for elected office. And Lieutenant Colonel John Masters was born on this day in 1914. He was a British novelist and a regular officer of the Indian Army. Masters is principally known for his historical novels set in India, notably Bhavani Junction, which was turned into a successful film. He also wrote 3 volumes of autobiography, which were positively received by critics.
आज प्रीति सिंह का जन्मदिन है। ये अंग्रेजी भाषा की भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार एवं संपादिका हैं। 2012 में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास फ्लोटिंग विथ फेट बेस्ट सेलिंग उपन्यास रहा और अपनी दूसरी किताब क्रॉसरोड के साथ ये एक अवार्ड विजेता लेखिका बन गई। इनका दूसरा उपन्यास क्रॉसरोड भारत का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें पात्रों के रूप में वास्तविक जीवन के लोगों का समावेश है।
Ravina Tandon was born on this day in 1968. She is an actress known for her work in Hindi films. She is the recipient of several awards, including a National Film Award, 2 Filmfare Awards and a Filmfare OTT Award. In 2023, she was awarded the Padma Shri, the 4th highest Indian civilian honor. Let's listen in to a song from one of her movies. And Asin Thottumkal was born on this day in 1985, known mononymously as Asin. She is a former actress who appeared predominantly in Tamil, Hindi and Telugu films. Asin is considered as one of the leading South Indian actresses of the 2000s and is referred to as the Queen of Kollywood. Let's listen in to one of her hit songs.
Mm-hmm.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।